الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. हम इस क्लास में तहसील बहिश्ती ज़ेवर से किताब सुलूक वल एहसान पढ़ रहे हैं, और उसमें जो इस वक्त मौजू चल रहा है अखलाक हमीदा और उनके हुसूल के तरीक़े, यानी ऐसे प्रेज वर्दी मैनर्स जो के अल्लाह ताला तक पहुंचा देने वाले हों और उनको कैसे हासिल किया जा सकता है। तो इनमें हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि इस किताब के कंपाइलर हैं, मुअल्लिफ हैं, तो उन्होंने सबसे पहले तो बताया कि जी तौबा करनी होगी, यानी जो अखलाक जमीमा हैं, बुरे अखलाक हैं और गुनाह हैं, तो उनसे तौबा करनी होगी। और उसके बाद फिर खौफ खुदा और उसका तरीक़ा बयान फरमाया कि ये जो तौबा है ये अल्लाह के खौफ की वजह से, कि अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह ताला कहीं मुझे अजाब ना दे दें, अपनी जहन्नुम में ना डाल दें, तो अल्लाह के खौफ की वजह से ही ये तौबा होनी चाहिए। फिर उसके बाद खौफ के साथ साथ अल्लाह ताला से उम्मीद रखना, तो तीसरा इसमें मौजू क्या था, उन्वान क्या था, कि अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखना। ये नहीं कि तौबा खौफ की वजह से करी लेकिन अब जो है वो शशोपंज में मुब्तला हैं कि पता नहीं तौबा कबूल होगी नहीं होगी और अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेंगे नहीं करेंगे। नहीं, अगर तौबा कर ली, जैसा कि तौबा करने का तरीका है, तो अगर वैसे तौबा कर ली तो फिर अल्लाह ताला यकीनन कबूल कर लेंगे और गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। जब इंसान तौबा कर लेता है और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद भी रखता है, तो उसके बाद उसको सब्र करना, यानी अब जो है वो एक एक नॉर्मल जिंदगी, एक पॉजिटिव जिंदगी, एक मुस्बत जिंदगी गुजार रहा है, तो उस जिंदगी के अंदर अब इस तौबा पे कायम कैसे रहना है, तौबा पे कायम कैसे रहना है, ठीक है, तो उसके लिए इंसान को सब्र की जरूरत होती है। ठीक है, सब्र का मतलब क्या है, इस्तेकामत, नेकी के ऊपर इस्तेकामत। ठीक है, तो फिर उसके अंदर हमने सबर के जो है वो 5 मवाक़े वगैरह पढ़े थे, सबर की तफसीलात पढ़ी थी। और सबर के साथ साथ फिर शुक्र करना, यानी जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं तो उनको अपना हक नहीं समझना। ठीक है, शुक्र करने का क्या मतलब था, कि अल्लाह ताला की नेमतों को अपना हक नहीं समझना बल्कि अल्लाह ताला का अपने ऊपर एहसान समझना। ठीक है, एहसान समझना, और एहसान जब इंसान समझता है किसी का अपने ऊपर, तो फिर ये इंसान की फितरत में है कि उसकी तरफ फिर वो शुक्रिया के साथ मायल होता है, शुक्रिया के साथ। ठीक है, अगर एहसान नहीं समझता तो शुक्रिया अदा नहीं करता, क्योंकि वो तो उसका हक था, कौन सी बड़ी बात हो गई कि उसको ला करके दे दिया उसका हक, ये कौन सी बड़ी बात है, इसके ऊपर मैं क्यों शुक्रिया अदा करूं। ठीक है, जुबान से रिवायती तौर पर अगर शुक्रिया अदा कर भी देगा तो भी दिल से शुक्रगुजार नहीं होगा। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात आती है तो वहां पर तो सारा का सारा मामला ही दिल का है। ठीक है ना, खाली जुबान से कुछ कह देना और दिल में उसके खिलाफ सोचना, ये बंदों के साथ तो चल जाता है लेकिन परवरदिगार के साथ तो नहीं चलता है, क्योंकि परवरदिगार तो का तो मामला ही ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाया, इन्ना अल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम, कि अल्लाह ताला तो तुम्हारे अजसाम की तरफ, ये हमारी जुबान क्या है, ये हमारे जिस्म का टुकड़ा है ना, तो जुबान से शुक्रिया अदा कर रहा है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारी जुबान को नहीं देखते, जो कि जिस्म का हिस्सा है ना, तुम्हारी जुबान को नहीं देखते। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। ठीक है, बल्कि अल्लाह ताला किस चीज को देखते हैं? तुम्हारे कुलूब को और तुम्हारे आमाल को। अब कल्ब की तरफ अल्लाह ताला देख रहे हैं तो उसके अंदर तो शुक्रगुजारी की कैफियत ही नहीं, राइट? जुबान से कह रहा है थैंक यू, राइट? और दूसरे अल्फाज भी कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और कल्ब की तरफ जब अल्लाह ताला देखते हैं तो अपना राइट समझ करके बैठा हुआ है नेमतों को। ठीक है, तो फिर ऐसे शुक्रिया का क्या फायदा है? ठीक है, तो शुक्रिया और इसका तरीका ये हमने मुकम्मल कर लिया था पढ़ के, और उसके बाद फिर तवक्कुल और इसका तरीका ये हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। और इससे पहले कि आगे चलें, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी क्योंकि एक कॉल आ गई है। ठीक है, तो जरा पॉज कर दीजिए इसको। तो जो आखिरी टॉपिक हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे वो था तवक्कुल और उसका तरीका। ठीक, तवक्कुल का मतलब क्या होता है? वक्कला युवक्किलु, तवकीलन। ठीक है, किसी को वकील बनाना, सही, किसी को अपने मामलात को सुपुर्द कर देना। ठीक है, तो तवक्कुल का लफ्ज अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना, अपने मामलात को, अपने अहवाल को, अपने कामों को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना, सुपुर्दगी। इसको उर्दू जुबान में सुपुर्दगी भी कहते हैं, अपने आप को हवाले कर देना। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है? तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने इसके तहत लिखा था कि यह हर मुसलमान को मालूम है कि अल्लाह ताला के इरादे के बगैर ना कोई नफा हासिल हो सकता है और ना नुकसान पहुंच सकता है। यानी जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है और जिस मुसलमान के पास अल्लाह ताला के बारे में बुनियादी इल्म भी है कि अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला क्या है, तो उसको ये इल्म हासिल होता है। मालूम का मतलब क्या? कि उसको ये इल्म हासिल होता है कि अल्लाह ताला की मर्जी से ही होता है जो कुछ भी होता है। ठीक है, लेकिन इल्म के ऊपर अमल करना ये एक नेक्स्ट लेवल की बात है। तो इल्म तो होता है एक मुसलमान को अल्लाह ताला के बारे में, इतना बहुत तो इल्म होता है ना, लेकिन अमल करना ये फिर तौफीक से और यानी अमल का एक एक अलग प्रोसेस होता है। तो फरमाते हैं कि इसलिए इंसान पर लाजिम है कि किसी भी काम में अपनी तदबीर पर भरोसा ना करे। यानी भरोसा ना करे क्या मतलब? कि तदबीर तो करे, क्योंकि तदबीर करना अल्लाह ताला का हुक्म है, मगर उसको मुस्तकिल ना समझे। मुस्तकिल ना समझे का मतलब कि मेरी तदबीर की वजह से ही काम होगा, और अगर मैं तदबीर नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा, तदबीर करूंगा तो लाजमन काम होगा। नहीं, तदबीर करोगे नहीं, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा काम बन जाए, बल्कि ये यकीन रखे कि काम का पूरा होना अल्लाह ताला के कब्जे में है। ठीक है, अल्लाह ताला का हुक्म है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम के जुबान मुबारक से जो हमें हुक्म मिले हैं वो भी तो अल्लाह ही का हुक्म है ना। नबी अलैहिस्सलाम, ये कोई थोड़ी कि अल्लाह ताला का हुक्म कुछ नहीं होता था और अपनी तरफ से हुक्म लगाते रहते थे, नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम का क्या हुक्म है? ए अकल के असबाब इख्तियार करो व तवक्कल, उसके बाद तवक्कुल करो। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से अल्लाह का हुक्म हमें पहुंच गया कि असबाब इख्तियार करो, फिर उसके बाद तवक्कुल करो, अल्लाह पे अल्लाह के हवाले करो। ठीक है, उसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म फरमाया फत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया। ठीक है, और भी बहुत सारे मुकामात के ऊपर बहुत सारे दूसरे अहकामात भी हैं जिनसे हमें असबाब को इख्तियार करने का पता चलता है कि भाई अल्लाह का हुक्म है। लेकिन ये एक बहुत ही जनरल अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो मेरी तरफ रुजू करने वाले हैं तुम उनकी इत्तबा करो। तो जब हम नबी अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबाब इख्तियार किए, बहुत सारे असबाब इख्तियार किए। तो फत्तबिअ का हुक्म फिर क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा करो, भाई जैसे उन्होंने असबाब इख्तियार किए वैसे ही तुम भी असबाब इख्तियार करो। तो तदबीर करना अल्लाह पाक का हुक्म है, ठीक है ना? समझ गए, डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ इदबिर तदबीर इख्तियार करो, ऐसे नहीं है हुक्म। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली हुक्म है कि भाई इत्तबा करो, तो इत्तबा करोगे तो फिर जाहिर है तदबीर अख्तियार करनी पड़ेगी, जैसे कि उन लोगों ने अख्तियार करी। तो लेकिन उसको मुस्तकिल ना समझे, बल्कि ये यकीन रखे कि काम का पूरा होना अल्लाह ताला के कब्जे में है। अगर वो चाहेंगे तो तदबीर असर करेगी, वरना नहीं करेगी। ठीक है, असर करेगी का मतलब कि तदबीर का नतीजा भी हमें मिलेगा, और अगर वो चाहेंगे कि नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, 1,000 तदबीरें कर लो, नतीजा अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, नजर अल्लाह ताला पर रखे और किसी मखलूक से ज्यादा उम्मीद ना रखे। ठीक है, ना किसी से ज्यादा डरे कि भाई वो मार देगा, वो पकड़ लेगा तो क्या होगा। ठीक है भाई, अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर अमल करना हमारा काम है, बाकी वो क्या कर सकता है, वो भी तो अल्लाह का बंदा ही है ना, वो भी तो अल्लाह का गुलाम ही है ना, तो वो अल्लाह की मर्जी के बगैर तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये समझ ले कि अल्लाह ताला के इरादे के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसको भरोसा और तवक्कुल कहते हैं। और कुछ आपको भी जो मजीद अल्फाज बताए, क्या बताए आपको मजीद अल्फाज? भरोसा और तवक्कुल, ये तो किताब में अल्फाज लिखे हैं ना, इस आजिज ने एक दो अल्फाज अभी आपको और भी बताए, वो क्या थे? किसी को, किसी ने नोट किया उन अल्फाज को, जहन में नोट किया हो या कागज पे नोट किया हो तो फिर वो जवाब दे सकती हैं। और क्या अल्फाज बताए इसके लिए? तवक्कुल, भरोसा, सुपुर्दगी। ठीक है, माशाल्लाह, सही है, सुपुर्दगी का लफ्ज के अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले करना, सुपुर्द करना। और एक और भी लफ्ज बताया था, हवाले करने का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह के हवाले करना। तो इसका तरीका यही है कि अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत को और मखलूक के मोहताज होने को खूब सोचे और याद किया करे। अच्छा, पिछली क्लास में इस आजिज ने आपको एक रसम के बारे में बताया था, उस रसम का नाम किसी को याद है? जिस रसम से जो है ना वो हमें तदबीर की वुकअत पता चलती है, तदबीर की कितनी वुकअत है हमारी, या कितनी कितना प्रोपोर्शन है मुआमला मुआमले के अंदर हमारी तदबीर की कितना का कितना पोर्शन है। ठीक है जी, माशाल्लाह, हंडिया चुलाई। ठीक है, माशाल्लाह, आप लोगों को लगता है आपके यहाँ भी ये रसम होती होगी जी। तो हंडिया चुलाई का मतलब क्या है कि बस आपने जो है ना वो कफगीर को पकड़ के, चमचे को पकड़ के जरा सा उसके अंदर चला दिया। ठीक है, और बाकी जो है वो काम दूसरे लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला के भी मामला है बंदे के साथ कि बंदे ने तो बस जरा सा चला देना होता है, असल में काम तो अल्लाह ताला ने करना होता है। ठीक है, हम तो पूरा काम कर ही नहीं सकते, जितनी हम जो है ना वो रात दिन एक कर दें और न जाने क्या क्या कर लें, हम नहीं कर सकते काम। ठीक है, अच्छा, अब ये एहसास हमारे अंदर पूरा करने के लिए हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने जो असबाब बयान किए हैं कि भाई ये कैफियत कैसे अपने अंदर पैदा होगी, तो अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत को सोचना। ठीक है, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना कि अल्लाह ताला देखें मेरी जिंदगी का जो मामला है इसकी क्या हैसियत है। अल्लाह ताला तो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, है ना, अल्लाह ताला सिर्फ यानी इंसानों के मामला नहीं चला रहे, अल्लाह ताला तो हैवानात के मामला चला रहे हैं, अल्लाह ताला तो हशरातुल अर्ज के मामला चला रहे हैं, पूरी की पूरी जो है वो प्लांट किंगडम, राइट, नबातात वाली जो पूरी की पूरी यानी वर्ल्ड है उसको अल्लाह ताला चला रहे हैं, अल्लाह ताला समंदर की मछलियों का निजाम चला रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला जो है वो बिलों के अंदर चूटियों का निजाम चला रहे हैं, ये जो शहद की मक्खी का निजाम है, अल्लाह अकबर कबीरा, एक अपना जो वो बनाती है ना, क्या कहते हैं उसको, हनी कुंभ या हनी जो अपना वो अपना छत्ता बनाती है शहद की मक्खी, तो एक मक्खी जो है वो बहुत ही छोटी मिकदार शहद की बनाने के लिए पता नहीं कितने हजारों फूलों को विजिट करती है। ठीक है, तो ये सब कौन कर रहा है, उस शहद की मक्खी को ये सारा सेंस किसने दिया, ये सारी हिकमत किसने दी, स्पाइडर
स्पाइडर वेब को जब हम पढ़ते हैं, जो मकड़ी का जाला है, तो अजीब व गरीब किस्म की चीजें सामने आती हैं। या आज पिछले दिनों स्पाइडर वेब के बारे में थोड़ी सी तहकीक कर रहा था, वो भी रीजन आपको बताई थी शायद एक क्लास के अंदर, ये क्यों कर रहे थे, है ना, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो मकड़ी के घर को जो है वो सबसे अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, अनकबूत का जो घर है ना मकड़ी का, वो सबसे ज्यादा बुरा घर अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया। ठीक है, तो साजिश ने तहकीक करी कि भाई मकड़ी के घर के बारे में क्या साइंसी तहकीकात उन्होंने करी है, तो अजीब व गरीब किस्म की चीजें सामने आई कि इतना, यानी इतना मजबूत होता है वो, इंसान का जो बाल होता है ना, उस बाल के मुकाबले में उसका जो जो सिल्क होता है जिससे कि वो अपना घर बनाता है, वो कई गुना ज्यादा पतला होता है, कई गुना ज्यादा पतला होता है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ इतनी होती है, इतनी इलास्टिसिटी होती है कि अगर आप एक पेंसिल के मोटाई के बराबर बना लेना नेट, ये मकड़ी के जाले का बना हुआ नेट, पेंसिल की मोटाई, बस इतनी ज्यादा मोटाई हो उसकी, तो उसके अंदर इतनी इस इलास्टिसिटी होती है, इतना, यानी जिसकी वजह से स्ट्रेंथ आ जाती है उसके अंदर, ताकत आ जाती है उस जाले के अंदर, कि अगर उड़ता हुआ जंबो जेट तैयारा, उड़ता हुआ जंबो जेट तैयारा उसके सामने आप फर्जी तौर पर, राइट, अगर ये मकड़ी का जाला लगा देना, तो वो मकड़ी का जाला उस उड़ते हुए जंबो जेट तैयारे को रोक सकता है। 747 बोइंग जंबू जिसको कहा जाता है, उड़ते हुए तैयारे को वो नेट रोक सकता है, इतनी ताकत उसके अंदर है। ठीक है, तो ये ताकत कहां से आई, किसने दी उसको ये ताकत? तो ये जो साइंस का इल्म है ना, साइंस का इल्म भी जो है वो दरअसल अगर इंसान की नीयत हो कि अल्लाह ताला की मखलूक को समझे ताकि अल्लाह ताला की सिफात का उसको पता चल सके, तो इस नियत के साथ साइंस का इल्म हासिल करना जो है ना, वो इंसान की के तवक्कुल को और उसके, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत में बे इंतहा इजाफा कर सकता है। ठीक है, जाहिर है हलाल तरीके से वो साइंस का इल्म हासिल करना तो शर्त है, लेकिन इल्म जो है ये अल्लाह ताला की मखलूक का ही तो इल्म है, अल्लाह ताला की मखलूक को ऑब्जर्व करने का, अल्लाह ताला की मखलूक के अंदर तहकीक करने का इल्म है ये, जिसको साइंस कहा जाता है। तो अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत को, फिर साइंस का इल्म तो वैसे भी दूसरे दर्जे पर आएगा, सबसे पहले अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत को समझने के लिए तो अल्लाह ताला का अपना कलाम हमारे पास मौजूद है। ठीक है ना, साइंस तो एक सानवी चीज है, जो बिल्कुल प्राइमरी चीज है अल्लाह ताला के बारे में जानने के लिए, वो अल्लाह ताला का अपना कलाम है। ठीक है, पिछले दिनों किसी मजलिस के अंदर बात भी हुई थी, गालबन आप में से अगर कोई सुन रही होंगी, तो जैसे जैसे बीवी के बारे में शौहर साहब जो है ना, जरा सा अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाए, ठीक है, और वो अपनी तरफ से जो है वो कुछ गुमान कर ले बीवी के बारे में कि भाई ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, इसने फलाना काम किया, फलाना काम किया, तो आगे से बीवी जो है वो अपनी सफाई पेश करेगी ना। ठीक है, तो सफाई पेश करते हुए वो क्या कहती है, वो कहती है कि आप मेरी बात तो सुने, आप मुझे तो सुने, राइट, आपने दूसरों को सुन करके मेरे बारे में ये गुमान बना लिया है, आप मुझसे तो बात करें ना, आप मेरी तो बात सुने ना, राइट, मैं अपने बारे में जैसा बता सकती हूँ, कोई और मेरे बारे में वैसे बता सकता है आपका कि क्या मामला हुआ था, क्या मैंने किया था, क्यों किया था मैंने, राइट, मेरी बात तो सुनो, कहते हैं ना कि नहीं कहते, कोई भी हो इस तरीके से अपने बारे में बताने के लिए वो सबसे पहले चाहेगा कि मेरी बात तो सुनो, तुम दूसरों की सुन सुन करके मेरे बारे में क्या अजम्पशंस किए बैठे हुए हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हमसे यही चाहते हैं, मेरे बंदों तुम मेरे बारे में जो है वो दूसरों से क्यों सुन सुन करके गुमान बना के बैठे हुए हो कि अल्लाह ताला ऐसा है और अल्लाह ताला वैसा है, और अल्लाह ताला जो है वो नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला सारा काम खुद नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला ने अपने जो है वो शरीक बना लिए हैं, कोई अल्लाह ताला का फलाना काम करता है, कोई अल्लाह ताला का फलाना काम करता है, कोई अल्लाह ताला का जो है वो, यानी है तो अल्लाह ताला ही खालिक और मालिक, लेकिन पूरा काम खुद नहीं कर सकते, इस वजह से पार्टनर्स बनाए हुए हैं अल्लाह ताला ने, राइट, ये किसने कहा, अल्लाह ताला ने खुद कहा, राइट, अल्लाह ताला की बेटियां हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुमने खुद देखा है कि मैंने बेटियां बनाई हैं अपनी फरिश्तों को, राइट, दूसरों की सुन सुन करके तुमने मेरे बारे में गुमान किए हुए, मेरी बात तो सुनो, क्या मेरा कलाम तुम्हारे पास मौजूद है? तुम मेरे कलाम को क्यों नहीं पढ़ते? तुम मेरे कलाम को क्यों नहीं समझते? राइट, मेरी बात तो सुनो तुम। तो क्या ये अल्लाह ताला का एक हक नहीं बनता हमारे ऊपर? राइट, कि हम अल्लाह की बात तो सुने। सही, तो अल्लाह ताला की कुदरत को पहचानने के लिए सबसे पहले हमारे पास अल्लाह ताला का कलाम है। ठीक है, अब उसको समझने के लिए जाहिर है आपको अरबी जुबान चाहिए होगी। अरबी जुबान सीखे बगैर तो अल्लाह का कलाम ही नहीं समझ सकते। तो अरबी जुबान सीखने के लिए आपको किसी इंसान के पास जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, या अल्लाह के पास ही जाएंगे? या अल्लाह मुझे अरबी जुबान सिखा दीजिए, मैं आपकी क्लास में आके बैठता हूँ, अरबी वाली क्लास में आके बैठता हूँ। नहीं, अल्लाह ताला ने अरबी जुबान की कोई क्लास नहीं शुरू करी हुई अपने पास, अपने अर्श के ऊपर। तो अल्लाह के बंदों के पास जाकर के अरबी जुबान से आपको सीखनी पड़ेगी ना। तो उसके ऊपर कोई कहे कि नहीं, तुम बस किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही अल्लाह का कलाम को समझ लो, तो भाई अरबी जुबान खुद से कैसे सीखोगे? ठीक है ना, तो अल्लाह के कलाम को समझने के लिए हमें अल्लाह के उन बंदों के पास जाना पड़ता है जो के अर्रहमानु फसअल बिही खबीरा। ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अर्रहमान, उसके बारे में तुम्हें जानना है ना, फसअल, तो सवाल करो उन लोगों से जो के अल्लाह के बारे में जानते हैं। फसअल बिही खबीरा, और वो कौन है? अल्लाह के बंदे, इंसान, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा जिन्होंने अल्लाह के नबी से इल्म हासिल किया, फिर ताबईन जिन्होंने अल्लाह के नबी के सहाबा से इल्म हासिल किया, फिर तबा ताबईन जिन्होंने ताबईन से इल्म हासिल किया, फिर उलमा और मशाइख जो कि अगली नस्लों के अंदर आते रहे आते रहे। ये सारे के सारे कौन लोग हैं? ये फसअल बिही खबीरा वाले लोग हैं। ठीक है, तो अल्लाह के बारे में जानने के लिए अल्लाह का कलाम, लेकिन अल्लाह के कलाम के बारे में जानने के लिए अल्लाह के ये इल्म वाले बंदे, उनके पास हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम ये वाला काम करते हैं ना कि अल्लाह की कुदरत और हिकमत को हम समझते हैं, तो फिर हमारे सामने अल्लाह की बड़ाई खुलती है। ठीक है ना, वरना तो हमने अम्मी अब्बू से सुना हुआ बहुत कुछ, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं, सिंक इन कुछ भी नहीं हुआ हुआ होता। ठीक है ना, जब तक आप खुद अपना जहन इसके लिए इस्तेमाल ना करें, आप खुद इसको स्टडी ना करें, खुद गौर फिक्र ना करें। ठीक है, और फिर जहां अल्लाह की बड़ाई के बारे में जानना, वहीं मखलूक के मोहताज होने को, मखलूक के मोहताज होने को भी खूब सोचे और याद किया करे। क्या मतलब? पे अटेंशन किया करे। मखलूक की मोहताजी तो हर तरफ जाहिर है हमारे, क्योंकि वी आर मखलूक। सही, हम मखलूक है ना, तो हमारी मोहताजी के हमारे सामने नहीं है कि हम एक टांग खड़ी करके तो खड़े रह सकते हैं, दूसरी टांग खड़ी करके हम खड़े नहीं रह सकते। ये हमारी लिमिट ऑफ यानी कुदरत है कि हमारे कितने कितनी कुदरत है ज्यादा से ज्यादा एक टांग खड़ी करने के ऊपर, दूसरी टांग खड़ी करने के ऊपर हमारी कुदरत नहीं है। ठीक है ना, घर के अंदर एक वायरस आ जाए, वायरस कितना बड़ा होता है, आप आंखों से तो क्या, आप माइक्रोस्कोप से भी वायरस को नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है वायरस को देखने के लिए, इतनी छोटी मखलूक होती है। लेकिन घर में एक वायरस लग जाए किसी को, फिर उसका हशर देखें, है ना, पता नहीं जो भी वायरस लगता है उसके मुताबिक वो उस बंदे को चित कर देता है। ठीक है ना, और सबको पता होता है जिन्होंने माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए सब वायरस पे तहकीक कर दी, उनको पता है कि उसको वायरस लगा हुआ है। सारी अलामत भी होती हैं जी वायरल इन्फेक्शन की। ठीक है, और वायरल इन्फेक्शन से खांस खांस के बुरा हाल, छींक छींक के बुरा हाल, बुखार के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, और फिर बाकी लोग जो घर के अंदर हैं, किसी को नहीं पता कि अगला इन्फेक्शन किसको लगेगा। राइट, डॉक्टर साहब कहते हैं जी घर में आ गया है, अब तो ये लगेगा, सब बैठे हुए हैं, अब मुझे लगेगा कि अब जो है वो उसे लगेगा। ये है हमारी मोहताजी की हैसियत। राइट, हमें इतना भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, हमें इतना भी जो है वो अपने हालात के ऊपर कंट्रोल नहीं कि हम एक ऐसी मखलूक से अपने आप को बचा सकें कि जिसकी कोई साइज ही कोई नहीं, जिसका उससे हम अपने आप को नहीं बचा सकते। ठीक है, तो अपनी मोहताजी को गौर, अब होता तो हम सबके साथ ही सब कुछ है, लेकिन हाउ मेनी ऑफ अस थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी ऑफ अस पे अटेंशन टू ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना, जो पे अटेंशन करता है उसके सामने मोहताजी खुल जाती है, और जो गफलत की जिंदगी गुजार रहा होता है उसको जो है वो टीवी ड्रामे देखने हैं, उसको सीरियल देखना है, उसको म्यूजिक सुननी है, उसको जो है वो खाने पीने से दिलचस्पी है कि बस मैं खाऊं और बस मैं जो ना वो अपने टेस्ट बड्स को हर वक्त फीड करता रहूं, या उसको जो है वो दूसरी किस्म की शहवाद से क्रिकेट देखता रहूं, ठीक है ना, वो हर वक्त जो है वो क्रिकेट को फॉलो करता रहता है, फलानी जगह पे ये मैच हो गया, फलानी जगह पे ये वर्ल्ड कप हो गया, उधर ये टूर्नामेंट हो गया, उधर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो गया, उधर जो है वो फलानी चीज का, राइट, दैट्स हाउ ही स्पेंड्स हिज लाइफ और हर लाइफ। तो ऐसे शख्स के सामने मखलूक की मोहताजी नहीं खुलती, हालांकि बिल्कुल सामने मौजूद है, लेकिन शी और ही इज नॉट एबल टू नोटिस एनीथिंग, ठीक है। तो इसी वजह से हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हकीम उल उम्मत क्या फरमाते हैं, खूब सोचे और याद करे, यानी सोचे भी और बार बार रिमाइंडर भी करता रहे अपने आप को, रिमाइंड भी करवाता रहे अपने आप को, ठीक है। तो ऐसा शख्स जो है ना फिर तवक्कुल करने के काबिल होगा, वरना क्या करेगा, वरना तवक्कुल नहीं करेगा, क्या करेगा, सुस्ती, ठीक है ना। तवक्कुल का लफ्ज उसने सुन लिया होगा, तारीफ उसने कहीं से सुननी होगी, क्योंकि ना तो उसके सामने अल्लाह की कुदरत खुली हुई है, ना उसके सामने मोहताज की यानी मखलूक की मोहताजी खुली हुई है। तो अब जो वो तवक्कुल कर रहा होता है ना बगैर इन रियालिटीज को समझे हुए, तो असल में वो तवक्कुल नहीं होता, वो सुस्ती होती है, वो काहिली होती है, कि काम खुद करना था वो तो किया नहीं, अल्लाह के हवाले, है ना भाई, अल्लाह ही करेगा जो करेगा भाई, जो काम आपके करने था वो करने का था, वो आपने करना था वो, जी पर मुश्किल है जी बहुत, है ना, इतनी मेहनत कौन करे, ठीक है ना, अल्लाह है ना करने के लिए, मुझे क्या जरूरत है कुछ करने की। तो ये सुस्ती और काहिली होती है, ये तवक्कुल नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है अल्लाह ताला से मोहब्बत और उसका तरीका। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ दिल का खिंचना और अल्लाह ताला की बातों को सुनकर और उनके कामों को देखकर दिल को मजा आ जाना, ये मोहब्बत है, ठीक है। दिल का खिंचाव, ये औरत से ज्यादा कौन इस बात को समझ सकता है, क्योंकि औरत के अंदर तो मोहब्बत का जज्बा जो है वो गालिब है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को औरत की मोहब्बत से समझाया कि 70 माओं से ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं। क्या मतलब कि मर्दों में जितनी मोहब्बत का जज्बा होता है ना वो कम होता है, औरत के अंदर ज्यादा मोहब्बत का जज्बा होता है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने ये भी नहीं फरमाया कि 140, चलो जी 70 माएं, ठीक है, तो फरमा देते 140 बाप, है ना, माँ की मोहब्बत से आधी मोहब्बत जो है वो बाप के अंदर होती है, तो चलो 140 फादर्स, उनसे ज्यादा जो है वो अल्लाह ताला अपनी औलाद से मोहब्बत, अपनी बंदों से मोहब्बत करता है ना, उस बिल्ला औलाद कह दिया, ठीक है, नहीं, माँ की मोहब्बत इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो नंबर्स के अंदर नहीं तोड़ी जा सकती। तो 70 का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली 70 नहीं होता मल्टीप्लाई बाय 70, 70 नहीं, ठीक है। तो औरत समझती है कि दिल के खिंचने को कि क्या कैफियत होती है, ठीक है ना, जब माँ बनती है तो औलाद की तरफ उसका दिल खिंचता है, ठीक है, जब बीवी बनती है तो शौहर की तरफ उसका दिल खिंचता है, जब बेटी होती है तो बाप की तरफ उसका दिल खिंचता है, ठीक है। तो वो जो कैफियत होती है ना ये कहलाती है मोहब्बत, ठीक है, दिल मायल होता है किसी की तरफ, और फिर उसको देख देख करके खुशी, आंखों को ठंडक मिलती है उसको देख करके, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला को हम देख तो नहीं सकते, तो फिर अल्लाह ताला की बातों को सुन करके, यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत फिर उसको अल्लाह ताला के कलाम को सुन करके होती है, क्योंकि यह अल्लाह की आवाज है, ठीक है ना, जो कि एक बंदा कॉपी कर रहा होता है। ये तिलावत क्या है, तिलावत जो है वो किसी इंसान के मुंह से निकल रही होती है, लेकिन क्यों इस तरीके से कुरान पढ़ते हैं, कुरान वैसे क्यों नहीं पढ़ते जिस तरीके से हम कोई अरबी की नॉवल पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह का जो टोन है ना, जो अल्लाह ताला का अंदाज है कुरान मजीद पढ़ने का या कुरान मजीद को बयान करने का, एग्जैक्टली वही वही अंदाज जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम को सिखाया, और वो कोई एक अंदाज नहीं था, उसके अंदर बहुत सारी जिसको के किरात की शक्लें कहते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी सूरतें जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सीखी अर्श के ऊपर, और फिर जाकर के जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को सिखाई, और नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को सिखाई, ठीक है। तो अल्लाह के कलाम को सुन करके मजा आना, ठीक है ना, फिर उसके बाद ना इंसान को अपने दिल के ऊपर काबू नहीं रखता, इंसान की आंखें जारी हो जाती हैं, आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, मोहब्बत वाले आंसू, ठीक है, इंसान का जो जो सीना है ना उसमें ऐसा लगता है कि जैसे हंडिया उबल रही है, ऐसे सीने के अंदर कैफियात हो रही होती है कुरान मजीद सुन करके, कि काबू नहीं होता इंसान को अपने ऊपर, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से होता है। और ऐसा शख्स जो होता है ना, फिर सजदे में सर रखता है, उसका दिल चाहता है कि बस मैं ऐसे ही पड़ा रहूं, अगर जरूरियात और मजबूरियां नहीं होती तो वो सजदे में ही पड़ा रहता, क्योंकि सजदे में अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब होता है, महबूब के सबसे ज्यादा करीब होता है बंदा, ठीक है, मुहिब। तो नमाज के अंदर फिर उसको मजा आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये अल्लाह की मोहब्बत है, और फिर अल्लाह ताला के कामों को देख करके दिल दिल को मजा आता है ना। अल्लाह ताला की जो ये दुनिया के अंदर क्यों जो निजाम चल रहा है, वो तवज्जो से उसको देखता है, उसको अल्लाह ताला से जोड़ता है कि देखो ये खुद से नहीं हो रहा, ये मेरे अल्लाह का काम है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, प्यारा सा बच्चा, प्यारी सी बच्ची होती है ना आपकी, ठीक है ना, वो जब कोई चीज बनाती है कागज के ऊपर, कोई ड्रॉइंग करती है, ठीक है ना, या कोई चीज जो है वो उसने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अंदर बना ली, या उसने जो है वो कोई और चीज जो है वो आपके प्लेडो से बना ली, ठीक है ना, तो क्या आप देख करके उसको क्या क्या बकवास है ये रिएक्शन आता है माँ की तरफ से, क्या फजूल चीज इसने करी है ना, गंद फैलाई हुई है खाली, मेरे बच्चे ने, मेरी बच्ची ने। नहीं, मोहब्बत होती है ना जिस माँ को अपने बच्चे से, ठीक है ना, वो उसके हर हर चीज को देख करके एंजॉय कर रही होती है, मोहब्बत उमंड रही होती है उसके अंदर, ठीक है ना, हालांकि गंद मचाई हुई होती है बच्चे ने, कोई दूसरा बंदा देखे तो कहेगा ये क्या कचरा किया हुआ है इसने, माँ देखती है मोहब्बत उमंडती है उसके अंदर, ठीक है। तो जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो, वो अल्लाह ताला के काम को देख करके क्या करेगा, है ये क्या, ये भी कोई चीज है करने की, ये उसकी रिएक्शन होगा, नहीं मजा आएगा, ठीक है ना। अब तसव्वुर करें जिस शख्स की जिंदगी ऐसी हो जाए, ठीक है, कि अल्लाह ताला के काम, जो कि हर तरफ ही अल्लाह के काम ही तो है, और क्या है इस दुनिया के अंदर, सब कुछ अल्लाह का किया हुआ काम ही तो है, जो अल्लाह के हर काम को देख करके मजा हासिल कर रहा हो, तो उसको तो दुनिया के अंदर जन्नत के मजे मिल गए ना, उसको तो दुनिया के अंदर जन्नत, इस गंद खाने के अंदर जिसको कि इंसानों ने गंद खाना बनाया हुआ है, अल्लाह ताला ने नहीं बनाया था गंद खाना, इंसानों की हरकतों की वजह से, जहर अल फसाद और फिर फिल बर्रे वल बहरे बिमा का सबाद नास, फसाद जो है वो जो कुछ दुनिया और पानी के अंदर है, वो इंसानों की कमाई की वजह से है, अल्लाह ताला ने तो बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई थी, ठीक है। तो जो शख्स फिर उसको अल्लाह की दुनिया के तौर पर देख रहा होता है, फिर तो मजे ही मजे, फिर तो क्या उसकी जिंदगी गुजरती होगी, कितनी खुशी में, कितने इत्मीनान में। इसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब, ठीक है, कि अल्लाह ताला की याद के साथ अगर तुम इस दुनिया में जिंदगी गुजारोगे ना, तुम्हारा दिल जो है ना वो मुतमइन होगा, तुम्हारा दिल जो है ना वो मोहब्बत के यानी कचौके तुम्हारे दिल के अंदर हर वक्त उठते रहेंगे, ठीक है। बस अल्लाह का जिक्र तो करके देखो, अल्लाह को याद तो करके देखो, अल्लाह ताला को अपनी जिंदगी और पूरी कायनात के जो निजाम है उससे जोड़ करके देखो, ठीक है ना, गाफिल मत हो अल्लाह ताला से, तो फिर तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं, ठीक है। तो फरमाते हैं कि इसका तरीका यह है कि अल्लाह ताला के नाम का कसरत से वर्द करें। तो जिक्र की एक शक्ल क्या होती है, नाम का जिक्र करना, ठीक है ना, और नाम का जिक्र करने का मतलब किसी चीज के साथ लगा करके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। जिक्र से जात की मोहब्बत पैदा होती है, जब मोहब्बत से किसी का नाम लिया जाता है ना, तो उसका नाम लेने से उसकी मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है। तो अल्लाह के नाम का कसरत से वर्द करें, उसकी सिफात कमाल को याद किया करें कि क्या अल्लाह ताला की रहीमी है, कैसे कैसे मेरे गुनाह होते हैं और अल्लाह ताला जो है ना उन पे पर्दे डाल देते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे गुनाहों को अल्लाह ताला खोल दें दुनिया वालों के ऊपर, मेरे घर वालों के ऊपर, तो लोग तो मुझे धक्के दे करके घर से बाहर निकाल दें, मेरे पड़ोसी तो कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर दें कि नहीं इस बंदे को हमारे मोहल्ले से आप निकालें, हम इसके साथ नहीं रहना चाहते, इतना गंदा इंसान है ये, इतने गुनाहगार इंसान है ये, इतना बदअखलाक इंसान है ये, हम घर के अंदर बदअखलाक ही करते हैं किसी को पता नहीं चलता, राइट। वरना अल्लाह ताला अगर एक्सपोज करना चाहे ना हमारी बद अखलाकी को, अल्लाह ताला के पास 1001 तरीके हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को खोल देना मखलूक के सामने अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। एक गलती हमसे करवा दे और बस हमारे सारे के सारे अहवाल जो है ना पूरी दुनिया के ऊपर खुल जाए, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की रहमत की का कमाल है, ये अल्लाह ताला की रहमत का कमाल है, अल्लाह ताला की फोरबेरेंस का, ठीक है, अल्लाह ताला के हिल्म का कमाल देखें। ये हिल्म भी एक सिफत है ना अल्लाह ताला की, हलीम है अल्लाह ताला, ठीक है। तो इन सिफात को जो है वो याद रखें, बाकी जो बहुत ही मुश्किल मुश्किल सिफात है जिनको कि हमें समझ में नहीं आता उनको छोड़ दें, अपनी जो जो हमसे रिलेटेड जो अल्लाह ताला की सिफात है उनको तो कम से कम याद करें ना, ठीक है। अल्लाह ताला को जो बंदे के साथ मोहब्बत है उसमें गौर करें, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है। अल्लाह ताला की खूबसूरती को याद करें कि भाई ये जो कुछ भी कायनात में हमें खूबसूरत चीज नजर आती है तो ये सब किसने बनाई, अल्लाह ताला ने बनाई, तो अल्लाह ताला खुद कितने खूबसूरत होंगे, ठीक है। वो फिर जो अल्लाह वाले होते हैं हमारे हजरत जैसे हैं, उन्होंने जो अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर कलाम किए हैं, जो हजरत के बयानात हैं, ओहो उनको सुन करके तो अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है ना वो ऐसी फूटती है इंसान के दिल के अंदर, ठीक है ना। जो हमारे मशायख हैं उनके जो अशआर होते हैं, अरबी के शेर हैं, उर्दू के शेर हैं, फारसी के शेर हैं, उफ अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला के जमाल के ऊपर जो अशआर हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर गौर करें, अल्लाह ताला की मोहब्बत बहुत बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। और ये एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर कोई इंतहा नहीं है। जरा होल्ड कीजिएगा। पे राजी, इंशाल्लाह अगला टॉपिक जो है अगली क्लास के अंदर शुरू करेंगे। यहाँ पे पहली क्लास इख्तिताम पसीर होती है। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी सी देर के अंदर हम मिसाली बहू की क्लास शुरू करेंगे इंशाल्लाह।